निर्गमन अध्याय 23। झूठी बात न फैलाना, मिथ्य शपथ, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट के साथ न देना। दूसरे शब्दों में झूठी कसम में षड्यंत्र रचना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना, उपद्रवी के साथ न देना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। निर्गमन 23:1-3 पद। सबसे पहले तो दीन दरिद्र या कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना, तब दरिद्र के मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। दूसरे शब्दों में न्याय में पक्षपात न करना और न्याय सही हो, क्योंकि वो कंगाल है उसके कारण पक्षधर न बनना, न ही इसलिए उसका न्याय बिगाड़ना कि वो कंगाल है। दूसरे शब्दों में उसकी वित्तीय दशा का असर न्याय पर नहीं पड़ना चाहिए, मुकदमे का न्याय सही होना चाहिए, उसे इसलिए लाभ न पहुंचाना क्योंकि वो कंगाल है, न ही उसका न्याय बिगाड़ना क्योंकि वो कंगाल है। इन बातों को ध्यान में रखना कि पक्ष विपक्ष न्याय के तराजू पर खरे उतरे, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो। पूरी न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि तेरे शत्रु का बैल वो गदा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। अब ये करना तो कठिन है, फिर यदि तू अपने बैरी के गदे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। निर्गमन 23:4-5 पद। यदि तू अपने पड़ोसी के गधे को देखे और वो बोझ से दबा जा रहा हो और आप वहां से गुजरे और यूं देखकर आगे बढ़ जाए, तब तो ये ठीक नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप जानवर के प्रति दयालु हो। चाहे पड़ोसी आपसे बैर रखे तब भी तू बोझ से छुड़ाने में मदद करना, उसके साथ लंबी शत्रुता न रखना। वो जानवर क्यों आपकी शत्रुता का फल भोगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप जानवरों के प्रति दया दिखाएं। झूठे मुकदमों से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न लेना। अब ये न्यायियों के लिए है, उन्हें किसी प्रकार की भेंट नहीं लेना था, क्योंकि देखने वालों को भी अंधा कर देती और धर्मियों की बातें पलट देती है। इसलिए न्यायाधीशों को भेंट नहीं लेना था कि वे भेंट से प्रभावित होकर सच्चा न्याय न करें। परदेशी पर अंधेर न करना। तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना। यहाँ फिर हमारे पास 6:1 का नमूना है और हम 6 वर्षों तक बोने पर बात कर चुके हैं। फिर आता है 7वां वर्ष, परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं के दरिद्र लोग उससे खाने पाए और जो कुछ उनसे भी बचे वो बदेले पशुओं के खाने का काम में आए, और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसा ही करना। निर्गमन 23:7-11 पद। दूसरे शब्दों में 7वां वर्ष दीन दरिद्र लोगों के लिए है। भूमि को विश्राम मिले, पर जो आपसे उगे उसकी पैदावार निर्धन लोग जाकर बटोर ले। 6 दिन तो अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना कि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। निर्गमन 23:12-14 पद। हमारे यहाँ धन्यवाद देने का पर्व होता है। उनके पास मानने के लिए तीन पर्व है। पहला अखमीरी रोटी का पर्व, दूसरा फसा का पर्व जो कि अखमीरी रोटी के पर्व के 50 दिनों बाद होता है, जब आप शीतकाल के अंत गेहूं का पहला फल जिसका वो जून में लाते थे। तीसरा पर्व हमारे यहाँ के समान धन्यवाद देने का पर्व था, जो कि वर्ष की कटनी के समय मनाया जाता है। जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। निर्गमन 23:16। तीसरा वर्ष ये हमारे धन्यवाद पर्व के समतुल्य है। प्रति वर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग ना चढ़ाना और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपना परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। निर्गमन 23:17-19 पर। अब इस छोटे से पद से यहूदियों ने तमाम नियम कानून बना दिए कि पशु फार्म का कोई भी उत्पादन मांस के साथ ना खाया जाए, क्योंकि व्यवस्था में इसकी मनाई है। तू बच्चे को उसकी माता के दूध में ना पकाना। इस कारण, इस छोटे पद के कारण, वे पशु फार्म के उत्पाद दूध, दही, पनीर इत्यादि को मांस के साथ नहीं खाते हैं। पवित्र शास्त्र में क्या वर्जित ठहरा रहा है? यदि तू बकरी का बच्चा खाने के लिए काटे तो उसकी माता के दूध में न उबालना। परंतु उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम पनीर के साथ जो मांस खा रहे हो वो पनीर उस पशु की मां के दूध से बना हो जो आपके पेट में जाकर घुट जाएगा। वे आज भी इस विषय में लकीर के फकीर हैं। यदि आप यरूशलेम जाए तो पाएंगे कि परमेश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले भी खाने के विषय में कोशेट स्वभाव अपना लेते हैं, अर्थात मांस खाते समय दूध नहीं पिएंगे। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जब वे काटी कबाब के साथ आपको मक्खन देते हैं और आप मक्खन नहीं खाते, क्योंकि आपका मानना ये है कि पेट में जाकर ये दोनों वस्तुएं विलय हो जाएगी और आप पद 19 में दिए गए नियम को तोड़ने दोषी पाए जाएंगे। इसी आडंबर के विषय यीशु ने फरीसियों से कहा था, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मत्ती 23:24 पद। अब वे मच्छर को क्यों ना निगले? क्योंकि जिसका लहू पूरा ना निकाला गया हो उसे वे नहीं खा सकते। यदि आप दौड़ लगा रहे हैं और आपके मुंह में एक मच्छर चला जाता है और गले में अटक जाता है तो मुंह में उंगली डालकर आपको उल्टी करनी पड़ेगी। वे यथासंभव प्रयास करके खांसेंगे और खकरेंगे और कुछ भी करके उस मच्छर को गले से निकालेंगे, क्योंकि यदि वो मच्छर जो हलाल नहीं किया गया है आपके पेट में चला जाता है तो आप नियम तोड़ने के दोषी हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। अन्य क्षेत्रों में वे बड़ी बड़ी बातों को अपने लाभ के लिए नियम विधान में हेर फेर करके अपने पक्ष में बना लेते थे, पर छोटी छोटी बातों पर सख्त नियम का पाबंदी लगा देते थे जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु न्याय और दया के बड़े मामलों पर वे अपने ढंग से व्याख्याएं किया करते, इसलिए उन बातों के प्रति यीशु उनके पीछे पड़ा। अब प्रभु प्रतिज्ञा कर रहा है कि जब वे देश में जाएं तब सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। निर्गमन 23:20 पर। मैं विश्वास करता हूँ कि यह स्वर्ग दूत निश्चय मसीह था। यहोवा ने कहा, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हिती, परजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनको सत्यनाश कर डालूंगा। निर्गमन 23:21-23 पर आपको ध्यान होगा, जब यहोशू यरीहो नगर को देखने बाहर निकला, तब उसने यहोवा की सेना के सेनापति को देखा और पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। यहोशू 5:13-14 पद यहोवा की सेना, यहोवा का स्वर्गदूत उनके आगे आगे अगुवाई करता जा रहा है। बाइबल के अनेक विद्वान मानते हैं कि ये मसीह का प्रगटीकरण था। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ये पद 23 में बताई गई जातियों के देवताओं के संदर्भ में है, और ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों की पूरी रीति से सत्यनाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसे समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हिती लोगों को तेरे सामने से भगाकर दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फलकर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। निर्गमन 23:24-30 पर इस प्रकार ये आशीषे हैं, ये सब मैं तेरे लिए करता रहूंगा, पर ये सब मेरी सेवा करने के विषय में कही गई, ये मेरी सेवा करने के लाभ है, ये तो सीमावर्ती लाभ है। मैं इन सब बातों को करूंगा, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, मैं शत्रुओं को वहां से खदेड़ दूंगा आदि। उसमें हम परमेश्वर की विजय की सिद्धांतों को पाते हैं, और ये भी कि वो किस तरह से हमारे जीवन में विजय लाता है, क्योंकि ये हिब्बी, कनानी और हिती और अन्य जातियां हमारे जीवन में दैत्यों का प्रतीक है। प्रतिज्ञात देश में आने का मतलब पवित्र आत्मा के जीवन में आना है, और पवित्र आत्मा की विजय है। जैवन जीवन जंगल में से निकलकर आना मसीह अनुभव के सदृश है, जहां अनेक उतार चढ़ाव के बाद मसीह यीशु में एक विजयी जीवन आता है, देह का नहीं आत्मा का जीवन। ये शत्रु जो देश में थे, हमारे शरीर के उन पहलुओं की प्रतिनिधित्व करते हैं जहां उन्होंने अक्सर हमें हराया और हम पर विजय प्राप्त की है। परंतु परमेश्वर हमारे गुस्से, हमारी चिंता, हमारे डरों, हमारे मानसिक स्वभाव, शरीर के किसी भाग की बंधुआई पर विजय देने की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर आपसे विजय की प्रतिज्ञा कर रहा है, पर ये विजय एक समय में एक ही क्षेत्र में आती है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके। मैं उन्हें एक ही वर्ष में निकाल कर दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको तत्कालीन सिद्धता पूर्णता नहीं देता है, परंतु हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर की विजय की प्रक्रिया यहाँ पुनः दोहराई जाती है। जब तक हम देश पर अधिकार न कर ले, मैं लाल समुद्र से लेकर पलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से। निर्गमन 23:31-32 पर थोड़ी देर में हम देखेंगे कि उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने गिदोन निवासियों से वाचा बांधी और हम इस समस्या पर विचार करेंगे जो इस आज्ञा न मानने के कारण आई थी। वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वे तुझ से मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो ये तेरे लिए फंदा बनेगा। निर्गमन 23:33 पर और ऐसा ही हुआ था।